अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट टू है किताब चट्टानों में फायर, पेशकश मोहम्मद अजहर, मुसन्निफ इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट टू। तो आप मुझे भी ये सारी बातें ना बताते, इमरान ने कहा। बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर शैतान की रूह मालूम होती है। इमरान संजीदगी से सर हिलाकर बोला, बहरहाल आपने मुझे बहेसर बॉडी गार्ड तल्ब फरमा लिया है। मैं किसी को भी ना तलब ना करता, ये सब कुछ सूफिया ने किया है। इसे हालात का इल्म है, और आपके भतीजे इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। आपने इन्हें कुछ बताया तो होगा ही, सिर्फ इतना कि मेरे बाद दुश्मन मेरी ताक में हैं और बंदर इनका निशान है। लेकिन इस तरह भरी हुई राइफलों के साथ शब्बे बेदारी का क्या मतलब है? क्या आप ये समझते हैं कि वो आपके सामने अगर हमला करेंगे? मैं ये बच्चों को बहलाने के लिए करता हूँ। ये खैर मारी गोली, इमरान ने बेपरवाही से शानों को जंबी देते हुए कहा, मैं सुबह की चाय के साथ बताशे और लेमन ड्रॉप्स इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी सुबह सूफिया की हैरत की कोई इंतहा ना रही। जब इसने देखा कि कर्नल इस खपती आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा खातिर मदारत कर रहा है। अनवर और आरिफ अपने कमरों में ही नाश्ता करते थे। वजह ये थी कि कर्नल को विटामिन का खप था। इसके साथ इन्हें भी नाश्ते में कुछ तरकारियां और भीगे हुए चने जहर मार करने पड़ते थे, इसलिए इन्होंने देर से सोकर उठना शुरू कर दिया था। आजकल तो एक अच्छा मुहाफ़ा बहाना हाथ आ गया था कि वो काफी रात तक गए राइफलें लिए टहलाते करते थे। आज नाश्ते की मेज पर सिर्फ सूफिया, इमरान और कर्नल थे, और इमरान कर्नल से भी कुछ ज्यादा विटामिन ज्यादा नजर आ रहा था। कर्नल तो भीगे हुए चने ही चबा रहा था, मगर इमरान ने यह हरकत की कि चनों को छील छील कर छिलके अलग और दाने अलग रखता गया। सूफिया इसे हैरत से देख रही थी। जब छिलकों की मिकदार ज्यादा हो गई तो इमरान ने इन्हें चबाना शुरू कर दिया। सूफिया को हंसी आ गई, कर्नल ने शायद इधर ध्यान नहीं दिया था। सूफिया के हंसने पर वो चौंका और फिर इसके होंठों पर भी खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। इमरान अहमकों की तरह इन दोनों को बारी बारी देखने लगा, लेकिन छिलकों के इसका शुगर अब भी जारी था। शायद आप कुछ गलत खा रही हैं, सूफिया ने हंसी जब्त करने की कोशिश की। हाय, इमरान आंखें फाड़ कर बोला, गलत खा रहा हूँ। फिर वो घबरा कर इस तरह अपने दोनों कान झाड़ने लगे जैसे वो अब तक सारे निवाले कानों में ही रखता हो। सूफिया की हंसी तेज हो गई। मेरा मतलब ये है कि आप छिलके खा रहे हैं, इसने कहा। ओ अच्छा, इमरान हंस कर सर हिलाने लगा। फिर इसने संजीदगी से कहा, मेरी सेहत रोज बरोज खराब होती जा रही है, इसलिए मैं गिज़ा का वो हिस्सा इस्तेमाल करता हूँ जिसमें सिर्फ विटामिन पाए जाते हैं। ये छिलके विटामिन से लिबरेज हैं। मैं सिर्फ छिलके खाता हूँ, आलू का छिलका, प्याज का छिलका, गेहूं का भूसी वगैरह वगैरह। तुम शैतान हो, कर्नल हंसने लगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। इमरान अपना मुंह पीटने लगा, अरे तौबा तौबा, ये आप क्या कह रहे हैं? कर्नल बदसतूर हंसता रहा। सूफिया हैरत में पड़ गई। अगर ये हैरत किसी और से सरबत होती तो कर्नल शायद झुल्लाहट में राइफल निकाल लेता। कभी वो इमरान को घूरती थी और कभी कर्नल को, जो बार बार अच्छी तश्तरियों की तरह इमरान की तवज्जो मबजूल कराता जा रहा था। क्या वो दोनों गधे अभी सो रहे हैं? दफन कर्नल, सूफिया ने पूछा। जी हाँ, मैं तंग आ गया हूँ इनसे। मेरी समझ में नहीं आता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। सूफिया कुछ ना बोली, कर्नल बड़बड़ाता रहा। नाश्ते से फारिग होकर इमरान बाहर आ गया। पहाड़ियों में धूप फैली हुई थी। इमरान किसी सोच में डूबा हुआ दूर की पहाड़ियों की तरफ देख रहा था। सोनागढ़ी की शादाब पहाड़ी यहाँ गर्मियों में काफी आबाद हो जाती हैं। नजदीक व दूर के मैदानी इलाकों को तपिश से घबराए हुए जी हैसियत लोग अमूमन यही पना लेते हैं। होटल आबाद हो जाते हैं और मकामी लोगों के छोटे छोटे मकानात भी रश्क इरम बन जाते हैं। वो अमूमन गर्मियों में इन्हें किराए पर उठा देते हैं और खुद छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। अपने किराएदारों की खिदमत भी अंजाम देते हैं, जिसके सिले में इन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। और फिर सर्दियों का जमाना इसी कमाई के बलबूते पर थोड़ी बहुत आसाइश के साथ जरूर गुजारते हैं। कनजरगाम की मुस्तकबिल सकूनत यहीं की थी और इसका शुमार यहाँ के सरबरा लोगों में होता था। सूफिया ऐसी इकलौती लड़की थी, अनवर और आरिफ भतीजे थे, जो गर्मियां अमूमन इसी के साथ गुजारा करते थे। इमरान ने एक तमीज रंगड़ाई और सामने से नजरें उठाकर इधर उधर देखने लगा। शहूदों की मीठी मीठी पुजारों चारों तरफ फैली हुई थी। इमरान जहां खड़ा था, इसे पाए बाग तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये था बाग बाग ही। आड़ू, खुबानी, सेब और शहतूत के दरख्त इमारत के चारों तरफ फैले हुए थे। जमीन पर गिरे हुए शहतूत ना जाने कब से सड़ रहे थे और इनकी मीठी बू जहन पर गिरा गुजरती है। इमरान अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि सामने से सूफिया आती दिखाई दी। अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो इमरान ही के पास आ रही है। इमरान रुक गया। क्या आप प्राइवेट सुराग रसा हैं? सूफिया ने आते ही सवाल किया। सुराग रसा? इमरान ने हैरत जरा लहजे में दोहराया। नहीं तो, हमारे मुल्क में तो प्राइवेट सुराग रसा किस्म की कोई चीज नहीं पाई जाती। फिर आप क्या हैं? मैं, इमरान ने संजीदगी से कहा, मैं क्या हूँ? मिर्जा गालिब ने मेरे लिए एक शेर कहा था। हैरान हूँ, दिल को रूहों को लपेटू जिगर को मैं, मुकद्दर हूँ तो साथ रखूँ नूहे घर को मैं हकीकत किराया का ये एक नू गिरूँ, साहिब मुकद्दर लोग दिया या जिगर को पटवाने के लिए मुझे किराए पर हासिल करते हैं, और फिर मैंने हैरान होने का भी वो नहीं देता, क्या कहते हैं इसे, मौका, मौका। सूफिया ने नीचे से ऊपर तक इसे घूर कर देखा। इमरान के चेहरे पर बरसने वाली हिमाकत कुछ और ज्यादा हो गई। आप दूसरों को उल्लू क्यों समझते हैं? सूफिया भुनाकर बोली। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी उल्लू को भी समझा हो। आप आज जा रहे थे? चेचे, मुझे अफसोस है, कर्नल साहब ने तसल्ली के लिए मेरी खिदमात हासिल कर ली हैं। मेरी साइड बिजनेस तसल्ली और दिलासा दुनिया भी है। सूफिया कुछ देर खामोश रही, फिर इसने कहा, तो इसका ये मतलब है कि आपने सारे मामला समझ लिए हैं। मैं अक्सर कुछ समझे बूझे बगैर में तसलियाँ देता रहता हूँ, इमरान ने मगमून लहजे में कहा। एक बार का जिक्र है कि एक आदमी ने मेरी खिदमत हासिल की। मैं रात भर इसे तसलियां देता रहा, लेकिन जब सुबह उठे मैंने देखा कि इसकी खोपड़ी में दो सुराख हैं और वो ना दिल को रो सकता है और ना जिगर को पीट सकता है। मैं नहीं समझती। इन सुराखों के बाद को रिवॉल्वरों की गोलियां बरामद हुई थी। मुआवजा था जनाब, मुआवजा, सचमुच ये मुआवजों का जमाना है। परसों ही अखबार में मैंने पढ़ा था कि ईरान में एक हाथी ने मुर्गी के अंडे दिए हैं। आप बड़ी अजीब पसंद मालूम होते हैं, सूफिया मुंह बिगाड़ कर बोली। आपकी घोड़ी बड़ी शानदार है, इमरान ने मौजू बदल दिया। मैं पूछती हूँ, आप डैडी के लिए क्या कर सकेंगे? सूफिया झुंझला कर बोली। दिलासा दे सकूंगा, सूफिया कुछ कहने ही वाली थी कि बरामदे की तरफ से कर्नल की आवाज आई। अरे तुम हो? फिर वो करीब आकर बोला, 11 बजे ट्रेन आती है, वो दोनों गधे कहाँ हैं? तुम लोग स्टेशन चले जाओ, मैं ना जा सकूंगा। क्या ये वापस नहीं जाएंगे? सूफिया ने इमरान की तरफ देखकर कहा। नहीं, कर्नल ने कहा, जल्दी करो, 9:30 बज गए हैं। सूफिया चलना में खड़ी इमरान को घूरती रही, फिर अंदर चली गई। क्या आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं? इमरान ने कर्नल से पूछा। हाँ, मेरे दोस्त हैं, कर्नल बोला। कर्नल डिक्सन, ये एक अंग्रेज हैं, मिस डिक्सन इसकी लड़की और मिस बादशाह तूश। बारतूश, इमरान बोला, क्या जीकू स्लोकिया का बाशिंदा है? हाँ, क्यों, तुम कैसे जानते हो? इस किस्म के नाम सिर्फ इधर ही पाए जाते हैं, बारतू डिस्कन का दोस्त। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, वो मशहूर भी है, वो मुसव्वर भी है। क्या वो कुछ दिन ठहरेंगे? हाँ, शायद गर्मियाँ यही गुजारें। क्या आप इन लोगों से लेवका वाले मामले का तज़करा करेंगी? हरगिज़ नहीं, कर्नल ने कहा, लेकिन तुम्हें इसका ख्याल कैसे पैदा हुआ? यूं ही अलबत्ता, मैं एक खास बात सोच रहा हूँ। क्या? वो लोग आप पर अभी तक करीब करीब सारे हर्ब इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कागजात हासिल करने में नाकाम रहे। कागजात हासिल किए बगैर वो आपको कत्ल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद वो किसी और के हाथ लग जाएं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लड़की या भतीजी की मौत पर बर्दाश्त कर सकते हैं। क्या बक रहे हो? कर्नल कांप कर बोला। मैं ठीक कह रहा हूँ, इमरान ने सर हिलाकर कहा। फर्ज कीजिए वो सूफिया को पकड़ ले, फिर आपसे कागजात का मुतालबा करे, इस सूरत में आप क्या करेंगे? मेरे खुदा, कर्नल ने आंखें बंद करके एक सुकून से टेक लगा ली। इमरान खामोश खड़ा रहा, फिर कर्नल आंखें खोलकर मुर्दा सी आवाज में बोला, तुम ठीक कहते हो, मैं क्या करूंगा? मैंने इसके बताले कभी नहीं सोचा था। सूफिया को स्टेशन ना भेजिए, अब मैं अनवर और आरिफ को भी नहीं भेज सकता। ठीक है, आप खुद क्यों ही नहीं जाते? मैं इन लोगों को तनहा भी नहीं छोड़ सकता, इसकी फिक्र ना कीजिए, मैं मौजूद रहूंगा। तुम? कर्नल ने इसे इस तरह देखा जैसे वो बिल्कुल खाली जहन हो। तुमने किया, तुम किसी खतरे का मुकाबला कर सकोगे? हाँ, क्यों नहीं, क्या आपने मेरी हवाई बंदूक नहीं देखी? संजीदगी मेरे लड़के, संजीदगी, कर्नल बेसब्री से हाथ उठाकर बोला। क्या आप कैप्टन फयाज को भी अहमक समझते हैं? आ नहीं, तब फिर आप भी खटके जा सकते हैं। मेरी हवाई बंदूक एक चिड़े से लेकर हिरन तक का शिकार कर सकती है। तुम मेरा रिवॉल्वर पास रखो। अरे तौबा तौबा, इमरान अपना मुंह बीटने लगा। अगर वो सचमुच चली गया तो क्या होगा? कर्नल चलना में इमरान को घूरता रहा, फिर बोला, अच्छा मैंने रोके देता हूँ, ठहरी एक बात और सुनिए, इमरान ने कहा और फिर कुछ आहिस्ता कहता हुआ रहा। कर्नल के चेहरे की रंगत कभी पीली पड़ जाती थी और कभी वो फिर अपनी असली हालत पर आ जाता था। मगर थोड़ी देर बाद अपने खुश होठों पर जबान फेर कर बोला, मैं नहीं समझ सकता। आप सब कुछ समझ सकते हैं, अब जाइए। ओ मगर नहीं कर्नल, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है, कुछ नहीं, बस आप जाइए। कर्नल अंदर चला गया। इमरान वहीं खड़ा कुछ देर तक अपने हाथ मलता रहा, फिर इसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अनवर और आरिफ दोनों को इसका बड़ा अफसोस था कि कर्नल ने इन्हें स्टेशन जाने से रोक दिया। इन्हें से पहले कर्नल रिक्शन या इसकी लड़की से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। सूफिया भी स्टेशन जाना चाहती थी, इसे भी बड़ी कोफ्त हुई। आप नहीं गए कर्नल साहब के साथ? आरिफ ने इमरान से पूछा। नहीं, इमरान ने लापरवाही से कहा और चिंगम चूसने लगा। मैंने सुना है कि कर्नल साहब आपसे बहुत खुश हैं। हाँ आ, मैं इन्हें रात भर लतीफे सुनाता रहा, लेकिन हम लोग क्यों हटा दिए गए थे? बच्चों के सुनने के लायक नहीं थे। क्या कहा बच्चे? आरिफ झिला गया। हाँ बच्चे, इमरान मुस्कुरा कर बोला, कर्नल साहब मुझे जवानी के मुआशकों का हाल बता रहे थे। क्या बकवास है? हाँ बकवास तो थी ही, इमरान ने संजीदगी से कहा, इनकी जवानी के जमाने में फौजियों पर आशिक होने का रिवाज नहीं था। इस वक्त की लड़कियां सिर्फ आशिकों से इश्क करती थी। समझ में नहीं आता कि आप किस किस्म के आदमी हैं। हाय, अब आप ये समझते हैं कि कसूर मेरा है? इमरान ने हैरत से कर्नल साहब खुद ही सुना रहे थे। आरिफ हंसने लगा, फिर इसने थोड़ी देर बाद पूछा, वो बंदर कैसा था? अच्छा था, खुदा समझे, आरिफ ने भुना कर कहा और वहां से चला गया। फिर इमरान टहलता हुआ उसके कमरे में आया, जहां अनवर और सूफिया शतरंज खेल रहे थे। वो चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। अचानक अनवर ने सूफिया को शह दी। इसने वाशा को उठाकर दूसरे खाने में रखा। दूसरी तरफ से अनवर ने फेल उठाकर फिर शह दी। सूफिया बचने ही जा रही थी कि इमरान बोल पड़ा, ओ होनिया यहाँ रखिए। क्या? सूफिया झुला कर बोली, आपको शतरंज आती भी है या यूं ही? बादशाह एक घर से ज्यादा नहीं चल सकता। तब वो बादशाह हुआ या केचवा? बादशाह तो मर्जी का मालिक होता है, ये खेल ही गलत है। घोड़े की छलांग ढाई घर की, फेल तिरछा सपाटा भरता है, चाहे जितनी दूर चला जाए। रुख एक सिरे से दूसरे सिरे तक सीधा दौड़ता है और फर्दें जिधर चाहे चले, कोई टोक नहीं होता। वो यह बादशाह घोड़े से भी बदतर है, क्यों ना इसे गधा कहा जाए, जो इस तरह खाने में रिंगता फिरता है। यार तुम वाकई बकरात हो, अनवर हंसकर बोला। चलो चाल चलो, सूफिया ने झुलाकर अनवर से कहा। सूफिया सच कर समझ कर नहीं खेलती थी, इसलिए इसे जल्द ही मात हो गई। अनवर ने इसे चिढ़ाने के लिए हंसने लगा। सूफिया इसकी इस हरकत की तरफ ध्यान दिए बगैर इमरान से मुखातिब हो गई। आपने डैडी को तनहा क्यों जाने दिया? मैं तनहा होकर कहीं नहीं जाना चाहता, इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं इनसे कह रहा था कि मैं अपनी हवाई बंदूक साथ ले चलूंगा, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं हुए। क्या आप वाकई हवाई बंदूक से मक्खियां मारते हैं? अनवर ने शौक मुस्कुराहट के साथ पूछा। जनाब, इमरान सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा झुका, फिर सीधा खड़ा होकर बोला, पिछली जंग में मुझे विक्टोरिया के इस मलते मिलते रह गया। मैं अस्पतालों में मक्खियां मारने के फरायद अंजाम देता रहा। इत्तेफाक से एक दिन एक डॉक्टर की नाक पर मक्खी बैठी हुई। मक्खी का निशाना लेते हुए जरा सी चोक लग गई। कसूर मेरा नहीं, मक्खी ही का था। वो नाक से उड़कर आंख पर जा बैठी। बहरहाल इस हादसे के बाद मेरी सारी पिछली खिदमत पर सोडा वाटर फेर दिया गया। सोडा वाटर? अनवर ने कहका लगाया। सूफिया भी हंसने लगी। जी हाँ, इस जमाने में खालिस पानी नहीं होता था, और ना मैं ये कहता कि मेरे साहब का कारनामों पर पानी फेर दिया गया। खूब, आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं, सूफिया बोली। मेरा दावा है कि मेरा निशाना बहुत साफ है। तो फिर दिखाइए ना, अनवर ने कहा। अभी लीजिए, इमरान अपने कमरे से एयरगन निकाल लाया। फिर फिर इसमें छुरा लगाकर बोला, जिस मक्खी को कहना है। सामने वाली दीवार पर कई मक्खियां नजर आ रही थी। अनवर ने एक की तरफ इशारा कर दिया। जितने फासले से कहिए, इमरान बोला, आखिरी सिरे पर चले जाएं। बहुत खूब, इमरान आगे बढ़ गया। फासला 18 फीट जरूर रहा होगा। इमरान ने निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। मक्खी दीवार से चिपक कर रह गई। सूफिया देखने के लिए दौड़ी। फिर इसने अनवर की तरफ मुड़कर तैयार आमेज लहजे में कहा, सचमुच कमाल है, डैडी का निशाना बहुत अच्छा है, लेकिन शायद वो भी। ओ, कौन सी बड़ी बात है, अनवर शेखी में आ गया। मैं खुद लगा सकता हूँ, इसने इमरान के साथ से बंदूक नील ली। थोड़ी देर बाद सूफिया भी इस शुगर में शामिल हो गई। दीवारों का प्लास्टर बर्बाद हो रहा था और इन पर गोया मक्खियां मारने का भूत सवार हो गया था। फिर आरिफ भी आकर शरीक हो गया। काफी देर तक ये खेल जारी रहा, लेकिन कामयाबी किसी को भी ना हुई। अचानक सूफिया बड़बड़ाई, ला हौला वाला कुव्वत, क्या हिमाकत है, दीवारें बर्बाद हो गईं। फिर वो सब भिजी हुई हंसी हंसने लगे, लेकिन इमरान की हिमाकत आमे संजीदगी में जरा बराबर भी फर्क ना आया। वाकई दीवारें बर्बाद हो गईं, आरिफ बोला, कर्नल साहब हमें जिंदा दफन कर देंगे, सवाब की बदौलत, इनवा ने इमरान की तरफ इशारा करके कहा। मेरी बदौलत क्यों, मैंने तो सिर्फ एक ही मक्खी पर निशाना लगाया था, अनवर हंसने लगा। फिर इसने इमरान के कांधे पर हाथ रखकर कहा, यार सच बताना, क्या तुम वाकई अहमक हो? इमरान ने बड़े मगमूम अंदाज में सर हिला दिया। लेकिन कल रात तुमने मंशियात की नाजायज तजारत के मुतालिक क्या बात कही थी, मुझे याद नहीं, इमरान ने हैरत से कहा। फिर कर्नल साहब ने हमें हटा क्यों दिया था, इनसे पूछ लीजिएगा, इमरान ने आरिफ की तरफ इशारा किया और आरिफ हंसने लगा। क्या बात है, अनवर ने आरिफ से पूछा। अरे कुछ नहीं, बकवास, आरिफ हंसता हुआ बोला। आखिर बात क्या थी, फिर बताऊंगा, सूफिया इमरान को घूरने लगी। वो बंदर कैसा था, अनवर ने इमरान से पूछा। अच्छा खासा था, आर्ट का एक बेहतरीन नमूना। घास खा गए हो शायद, अनवर झुला गया। मुमकिन है लंच में घास ही मिले, इमरान ने मिस्कीन सूरत बनाकर कहा, नाश्ते में तो चने के छिलके खाए थे। तीनों बेतहाशा हंसने लगे, लेकिन सूफिया जल्दी जल्दी संजीदा हो गई और उसने गुस्सीली आवाज में कहा, आप डैडी का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं वो क्यों खामोश रह गए। मुमकिन है इन्हें ख्याल आ गया हो कि मेरे पास भी हवाई बंदूक मौजूद है, इमरान ने संजीदगी से कहा, और हकीकत यह है कि मैं इनका मजाक उड़ाने की कोशिश हरगिज नहीं कर रहा था। मैं भी विटामिन पर जान छिड़कता हूँ, विटामिन को खतरे में देखकर मुझे पूरी कौम खतरे में नजर आने लगती है। क्या बात थी, अनवर ने सूफिया से पूछा। कुछ नहीं, सूफिया ने बात टालनी चाहिए, लेकिन अनवर पीछे पड़ गया। जब सूफिया ने महसूस किया कि जान छुड़ानी मुश्किल है, तो उसने सारी बात दोहरा दी। इस पर कहका पड़ा, यार कमाल के आदमी हो, अनवर हंसता हुआ बोला। पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ, वरना मेरे डैडी तो मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हैं। तो फिर आपके डैडी ही? अरे, इमरान हाथ उठाकर बोला, ऐसा ना कहिए, वो बहुत बड़े आदमी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या, अनवर हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, यानी रहमान साहब? जी हाँ, इमरान ने लापरवाही से कहा। अरे तो आप ही वही हैं, इमरान हैं, जिसने लंदन में अमरीकी गुंडे मक्लारेंस का गुर्दा तोड़ा था। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, इमरान ने हैरत का इजहार किया। नहीं, आप वही हैं, अनवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। वो सूफिया की तरफ मुड़कर नदामत आमेज लहजे में बोला, हम अभी तक एक बड़े खतरनाक आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। सूफिया फटी फटी आंखों से इमरान की तरफ देखने लगी और इमरान ने एक हिमाकत आमेज कहकर लगाकर कहा, आप लोग न जाने क्या हाँक रहे हैं। नहीं सूफिया, अनवर बोला, मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरा एक दोस्त राशिद ऑक्सफोर्ड में इनके साथ था, इसने मुझे मक्लारेंस का वाकया सुनाया था, वो मक्लारेंस जिसका वहां की पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, इमरान साहब से टकराने के बाद अपने गिरदा समेत फना हो गया था। खूब हवाई छोड़ी है किसी ने, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। मक्लारेंस के सर के दो टुकड़े हो गए थे, अनवर बोला। अरे तौबा तौबा, इमरान अपना मुंह पीटने लगा, अगर मैंने इसे मारा हो तो मेरी कब्र में कट्टर घुसे। नहीं बिच्छू, भगो भगो, हाय नहीं गलत, क्या कहते हैं इसे, छोटे से जानवर को जो कब्रों में घुसता है, बिज्जू, आरिफ बोला। खुदा जीता रहे, बिज्जू बिज्जू। इमरान साहब, मैं माफी चाहता हूँ, अनवर ने कहा। अरे आपको किसी ने बहकाया है? नहीं जनाब, मुझे यकीन है। सूफिया इस दौरान में कुछ नहीं बोली, वो बराबर इमरान को घूरे जा रही थी। आखिर इसने सूख निकल कर कहा, मुझे कुछ कुछ याद पड़ता है कि एक बार कैप्टन फयाज ने आपका तذکرہ किया था। किया होगा, मुझे वो आदमी सख्त नापसंद है। इसने पिछले साल मुझसे 5.5 रुपये उधार लिए थे, आज तक वापस नहीं किए। 12:15 बजे कर्नल डिक्सन, इसकी लड़की और मिस्टर बारतोश कर्नल को कोठी में दाखिल हुए, लेकिन कर्नल के साथ नहीं था। कर्नल डिक्सन उधेड़ उम्र का एक दुबला पतला आदमी था, आंखें नीली मगर दर्द धुंधली थी। मूंछों का निचला हिस्सा तंबाकू नोशी की कसरत से ब्राउन रंग का हो गया था। इसकी लड़की नौजवान और काफी हसीन थी। हंसते वक्त इसके गालों में खफीफ से कड़े पड़ जाते थे। बारतोश अच्छे तनोतोष का आदमी था। अगर इसे बारतोश के बजाय सिर्फ तनोतोष कहा जाता तो गैर मुनासिब ना होता। के चेहरे पर बड़े आर्किटिस्ट किस्म की दाढ़ी थी, चेहरे की रंगत में फीकापन था, मगर इसकी आंखें बड़ी जानदार थीं। अगर वो इतनी जानदार ना होती तो चेहरे की रंगत की बिना पर कम से कम पहली नजर में तो इसे वर्म जिगर का मरीज जरूरी समझा जा सकता था। हेलो बेबी, कर्नल डिक्सन ने सूफिया का निशान थपथपाते हुए कहा। अच्छी तो हो, मुझे ख्याल था कि तुम लोग स्टेशन जरूर आओगे। कब लगने के सूफिया कुछ कहती, डिक्सन की लड़की इससे लिपट गई। फिर तारुफ शुरू हुआ। जब इमरान की बारी आई तो सूफिया कुछ झिझकी। इमरान आगे बढ़कर खुद बोला, मैं कर्नल जरगाम का सेक्रेटरी हूँ। अनादान अर मिस्टर नादान। फिर वो बड़े बेतुकेपन से हंसने लगा। कर्नल डिक्सन ने लापरवाही के अंदाज में निशाने सिकोड़े और दूसरी तरफ देखने लगा। सुरगई कहाँ है? कर्नल डिक्सन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। क्या वो आपके साथ नहीं है? सूफिया चौंक कर बोली। मेरे साथ? कर्नल डिक्सन ने हैरत से कहा। नहीं तो। ओ नहीं, ओ नहीं। क्या वो आपको स्टेशन पर नहीं मिले? सूफिया के चेहरे पर हवाइया होने लगी। सूफिया ने इमरान की तरफ देखा और उसने अपनी बाएं आंखें दबा दी, लेकिन सूफिया की परेशानी में कमी वाकई नहीं हुई। इसने बहुत जल्द इससे तन्हाई में मिलने का मौका निकाल लिया। डैडी कहाँ है? पता नहीं। और आप इतने ध्यान से बैठे हुए हैं? हाँ, खुदा के लिए संजीदगी इख्तियार कीजिए। फिक्र मत कीजिए, मैं कर्नल का जिम्मेदार हूँ। मैं इन्हें तलाश करने जा रही हूँ। हरगिज नहीं, आप कोठी से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। आखिर क्यों? कर्नल का हुक्म? आप अजीब आदमी हैं, सूफिया झुंझला कर गई। मौजूदा हालात का इल्म मेहमानों को ना होना चाहिए। इन दोनों की मना कर दीजिए, इन्हें इसका इल्म नहीं है, सूफिया ने कहा। इतना तो जानते हैं कि कर्नल किसी खतरे में है। हाँ, इसका तذکرہ भी ना होना चाहिए। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? सूफिया रोहांसी आवाज में बोली। मेहमानों की खातिर इमरान पुरसुकून लहजे में बोला, आपसे खुदा समझे मैं पागल हो जाऊंगी। डरने की बात नहीं, कर्नल बिल्कुल खतरे में नहीं है, आप पागल हैं, सूफिया झुंझलाकर बोली। इमरान ने इस तरह सर हिला दिया जैसे इसे अपने पागलपन का एतराफ हो। शाम हो गई, लेकिन कर्नल दरगाह वापस न आया। सूफिया की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। डिक्सन बार बार दरगाह के मुताबिक पूछता था। एक आध बार इसने ये भी कहा कि शायद अब मुर्गी अपने दोस्तों से घबराने लगा है। अगर ये बात थी तो इसने साफ साफ क्यों नहीं लिख दिया। सूफिया इस बौखलाहट में यह भी भूल गई थी कि इमरान ने इसे कुछ हिदायत दी थी, जिनमें से एक ये भी थी कि अनवर और आरिफ मौजूदा हालात के मुताबिक मेहमानों से कोई गुफ्तगू ना करें। सूफिया अनवर और आरिफ से इसका तذکرہ करना भूल गई। और फिर जिस वक्त आरिफ से हिमाका सरजद हुई, सूफिया वहां वहां से मौजूद नहीं थी। वो बावर्ची खाने में बावर्चियों का हाल बता रही थी और इमरान बातें बना रहा था। डिक्सन वगैरह बरामदे में थे। अनवर बारतोश से रॉफील की तस्वीरों के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा था। आरिफ डिक्सन की लड़की मार रहा था, अपने अलम दिखा रहा था। और डिक्सन दूर की पहाड़ियों की चोटियों में शफक की रंगीन लहरें देख रही थी। अचानक इसने आरिफ की तरफ मुड़ कर देखा। रकी ने ऐसी उम्मीद नहीं थी। आरिफ इस वक्त मौज में था। इसमें ना जाने क्यों इन लोगों के लिए अपनाइयत का एहसास बड़ी शिद्दत से पैदा हो गया था। हो सकता है कि इसकी वजह से कर्नल की शोक और नापसंदीदे समझे। अब मैं क्या करूं, आरिफ बिल्कुल उल्लू है। खैर, इमरान कुछ सोचने लगा, फिर इसने कहा, जल्दी करो, मैं नहीं चाहता कि अब मेरे मुताबिक मेहमानों से कुछ कहा जाए। वो दोनों बरामदे में आए। यहाँ अनवार और मैं आरिफ की खासी मरम्मत कर चुका था और अब वो खामोश बैठा था। मुझे पूरे वाकयात बताओ, कर्नल ने सूफिया से कहा। पूरे वाकयात का इल्म कर्नल के अलावा और किसी को नहीं, इमरान बोला। क्या किस बात का खौफ था? इसे डिक्सन ने पूछा। वो लकड़ी के एक बंदर से बुरी तरह खाइफ थे। क्या बकवास है? इसीलिए कहता है था कि वाकयात ना पूछिए, मुझे कर्नल साहब की जहनी हालत पर शुबा है, इमरान बोला। इसके बावजूद भी तुम लोगों ने इसे तनहा घर से बाहर निकलने दिया। इनकी जहनी हालत बिल्कुल ठीक थी, आरिफ ने कहा। तो फिर बकवास किए जा रहा है, अनवर ने इसे उर्दू में डांटा। कर्नल डिक्सन अनवर को घूरने लगा। तुम लोग बड़े पुरस्कार मालूम हो रहे हो, इसने कहा। ये दोनों वाकई बड़े पुरस्कार हैं, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। आज ये दिन भर एयरगन से मक्खियां मारते रहे हैं। मार्था इस जुमले पर बेसाख्ता हंस पड़ी। इनसे ज्यादा पुरस्कार तुम हो, कर्नल ने तजिया लहजे में कहा। जी हाँ, इमरान ने आहिस्ता से सर हिलाकर कहा, मक्खियां मारने का मशवरा मैंने ही दिया था। देखिए मैं बताती हूँ, सूफिया ने कहा, मुझे हालात का ज्यादा इल्म नहीं। डैडी को एक दिन डॉक से एक पार्सल मिला जिसे किसी नामालूम आदमी ने भेजा था। पार्सल से लकड़ी का एक छोटा सा बंदर बरामद हुआ और इसी वक्त से डैडी परेशान नजर आने लगे। इस रात इन्होंने टहलकर सुबह की और पूरी तरह मुसल्ला थे। दूसरे दिन इन्होंने 8 पहाड़ी मुलाजिम रखे जो रात भर राइफलें लिए इमारत के गिर पहरा दिया करते थे। डैडी ने मुझे इतना ही बताया कि वो किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे हैं। और इस बंदर का मतलब था क्या था? बारदोश ने पूछा जो अब तक खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। डैडी ने इसके मुताबिक हमें कुछ नहीं बताया। हम अगर ज्यादा इसरार करते तो वो खफा हो जाया करते थे। लेकिन तुमने हमसे ये बात क्यों छुपानी चाहिए थी? डिक्सन ने पूछा। डैडी का हुक्म, इन्होंने कहा था कि इस बात के फैलने पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अजीब बात है, डिक्सन कुछ सोचता हुआ बोला, क्या मैं इन हालात में इस छत के नीचे चैन से ना रह सकूंगा? मेरा ख्याल है कि खतरा सिर्फ कर्नल के लिए था, इमरान बोला। तुम अहमक हो, डिक्सन झुंझला गया, मैं खतरे की बात नहीं कर रहा। जरगाम के लिए वसूली कर ली गई है। मैं सोचता हूँ मुमकिन है कि कोई शरीर तबीयत आदमी खामखा सनसनी फैलाने के लिए ऐसा कर रहा है। करीब करीब शहर के हर बड़े आदमी को इस किस्म के खतूत मिले हैं और इनमें से किसी बड़ी रकम का मुतालबा किया गया है। कोई ऐसा भी है जिसने इस किस्म की कोई शिकायत ना की हो? डीएस ने मुस्कुराकर पूछा। मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई बचा हो, खालिद ने कहा। जहन पर जोर दो, हो सकता है कि कोई शायद रह ही गया हो। कर्नल जरगाम, डीएस ने मुस्कुराकर कहा, इसकी तरफ अभी तक इस किस्म की कोई इतला नहीं थी, हालांकि वो बहुत मालदार आदमी है। ओ, और अब समझने की कोशिश करो, डीएस ने कहा। कर्नल जरगाम इस किस्म की कोई इतला नहीं देता और फेडरल डिपार्टमेंट का सुपरिटेंडेंट एक ऐसे आदमी के लिए हमसे इमदाद का तलब है जो कर्नल जरगाम ही के यहाँ मुकीम है, क्या समझे? तब तो जरूर कोई बात खास है। बहुत ही खास, डी एस ने मुंह से पाइप निकाल कर कहा। मेरा ख्याल है कि तुम खुद ही इस आदमी से, क्या नाम, इमरान से मिलो। मैं जरूर मिलूंगा, मगर मालूम नहीं वो कौन और किस किस्म का आदमी है। बहरहाल ये तो मिलने ही पर मालूम हो सकेगा, डीएस ने कहा और अपने मेज पर रखे हुए कागजात की तरफ मुतवज्जा हो गया। रात के खाने पर मेज की फिजा बड़ी सोगवार रही। इन्होंने बड़ी खामोशी से खाना खत्म किया और फिर कॉफी पीने के लिए बरामदे में जा बैठे। सूफी कर्नल डिक्सन बोला, मैं कहता हूँ कि पुलिस को इसकी इतला जरूर देनी चाहिए। मेरी भी यही राय है, बारतोश ने कहा, वो बहुत कम बोलता था। मैं क्या करूं, सूफिया ने अपताए हुए लहजे में कहा। डैडी इस मामले को आम नहीं करना चाहते, पुलिस के तो सिरे के खिलाफ हैं। इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊं तो तुम लोग फिक्र मत करना, मैं खतरा दूर होते ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन पुलिस को इसी की इतला हरगिज ना दूं। इमरान ने सूफिया की तरह तारीफी नजरों से देखा। जरगाम हमेशा पुलिसरार हैं, कर्नल डिक्सन बड़बड़ाया, यहाँ सबसे ही पुरस्कार है, इमरान ने कहा और मार्था की तरफ देखकर हंसने लगा। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें अभी तक नहीं समझ सका, कर्नल ने इमरान से कहा। मुझे हैरत है कि जरगाम ने तुम्हें अपना सेक्रेटरी कैसे बना रखा है, वो तो बहुत ही गुस्सेवर है। मैं इन्हें कन्फ्यूज की अकवास सुनाया करता हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा। तुमने फिर इसका नाम लिया, क्या तुम मुझे चिढ़ाते हो? पार्ट 2 यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। किताब चट्टानों में फायर का बकिया हिस्सा पार्ट 3 में समाप्त फरमाइए।